यदि आपके कोई सुझाव, विचार या शिकायत है तो आप हमें ईमेल के जरिए बता सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedbackgvani@ignu.ac.in। खतों के माध्यम से भी आप अपने सुझाव विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा पता है ज्ञानवाणी दिल्ली, संचार केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली 110068। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी अपने सुझाव विचार साझा कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है ज्ञानवाणी दिल्ली।
मुझे कुछ कहना है,
मुझे भी कुछ कहना है,
पहले तुम,
पहले तुम,
पहले तुम,
पहले तुम।
अगर आपको भी कुछ कहना है तो जुड़िए ज्ञानवाणी दिल्ली के फेसबुक पेज से और खुल के कीजिए अपने दिल की बात ज्ञानवाणी दिल्ली के साथ।
ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रमों के लिए आप ज्ञान दर्शन टीवी चैनल, जो कि सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म और केबल नेटवर्क्स पर उपलब्ध है, एयरटेल नंबर 442, टाटा स्काई पर 755 पर और सन डायरेक्ट 596,
डिश टीवी पर 944,
इंडिपेंडेंट टीवी पर 566 नंबर पर और डीडी फ्री डिश पर चैनल नंबर 25 पर, हैथवे 473 और इन डिजिटल 297 पर और डैन पर 526 नंबर पर आप ज्ञान दर्शन टीवी चैनल देख सकते हैं। ज्ञान दर्शन चैनल को ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। इसका ऑनलाइन वेब लिंक है www.ignuonline.ac.in/ज्ञान दर्शन/।
आप हैं ज्ञानवाणी दिल्ली एफएम 105.6 मेगाहर्ट्ज के साथ। रेडियो काउंसलिंग के हमारे सेशन चल रहे हैं और इसी श्रृंखला में हमारा जो अगला सेशन है वो है MLIS प्रोजेक्ट। एक्सपर्ट हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, डॉक्टर जयदीप शर्मा, स्कूल ऑफ सोशल साइंस से। हेलो।
हेलो,
स्वागत है सर आपका ज्ञानवाणी पर।
नमस्कार
जी। सर आज आप हमें MLIS, जी जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ज्ञानवाणी पर। और आज जो आपका विषय है वो है MLIS प्रोजेक्ट, जिस पर आप हमें जानकारी देने वाले हैं। तो सर आप हमें इस टॉपिक पर क्या क्या जानकारी देंगे?
देखिए हमारा जो MLIS प्रोजेक्ट है इसके बारे में मैं बताना। हेलो
जी जी।
MLIS प्रोजेक्ट के बारे में मैं, ये क्या है, क्यों हम ये प्रोजेक्ट करते हैं और कैसे करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे
जी।
तो सबसे पहले मैं आज अपने स्टूडेंट्स का स्वागत करूंगा। आई वेलकम यू ऑल टू दिस MLIS प्रोजेक्ट सेशन एंड वी विल डिस्कस ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू MLIS प्रोजेक्ट
जी।
MLIS प्रोजेक्ट ने ये क्यों किया जाता है, ये कैसे किया जाता है, आपको एक एक स्टेप में ये सब कैसे किया जाएगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज
जी। बताएं सर।
देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये एक कोर्स है MLIS का
जी।
और इस कोर्स का कोड है MLIP002
जी।
100 मार्क्स का ये प्रोजेक्ट होता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 8 कोर्सेज हैं, उसमें से 6 कोर कोर्सेज हैं, 2 ऑप्शनल कोर्सेज हैं और ये सारे कोर्सेज 100 मार्क्स के होते हैं। तो इसी प्रकार ये प्रोजेक्ट भी 100 मार्क्स का है और इसका जो वेटेज है वो 4 क्रेडिट्स है। 4 क्रेडिट्स का मतलब है आपको 120 घंटे इसकी तैयारी के लिए लगाने चाहिए। तो आप इसको जब सबमिट करेंगे तो ये आपका इवैल्यूएशन इसका 100 मार्क्स से होगा
जी।
और आपको इसको पास करने के लिए 50 मार्क्स लेने जरूरी है। दूसरे कोर्सेज का तो 40 मार्क्स है, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए आपको 50 मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स। ये ध्यान रहे कि इस प्रोजेक्ट में आपका कोई वाइवा वासी नहीं होता है, आप प्रोजेक्ट करिए, सबमिट कर दीजिए और इसके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होगा। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी थोड़ी सी ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
जी,
तो जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले एक साइनोप्सिस बनाना पड़ेगा, और साइनोप्सिस बना के आपको फैकल्टी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंस्टीट्यूशन साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंस से मैदान गढ़ी में, आपको इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदान गढ़ी न्यू दिल्ली 110068 में जमा करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि प्रोजेक्ट जब कंप्लीट करेंगे उसको आपको स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन में जमा करना है, प्रोजेक्ट सेक्शन में। तो दोनों अलग अलग हैं, सिनॉप्सिस आपको स्कूल में सबमिट करना है और प्रोजेक्ट आपको स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन में सबमिट करना है। तो पहला स्टेप आप सिनॉप्सिस है, और सिनॉप्सिस से भी पहले जो प्रोजेक्ट में आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको एक सुपरवाइजर लेना पड़ेगा, सुपरवाइजर या गाइड। और सुपरवाइजर आपका कौन हो सकता है ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जिनको सुपरवाइजर ऑप्ट करते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि सुपरवाइजर की कुछ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होता है। तो जिसको आप सुपरवाइजर लें वो यूजीसी की लेक्चरर ग्रेड में काम करते हैं, और कम से कम उनका 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मिनिमम या तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या फिर वो किसी कॉलेज में लाइब्रेरियन हो, या किसी यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो, या डेप्टी लाइब्रेरियन या लाइब्रेरियन हो, या फिर किसी स्पेशल लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन हो, या फिर किसी पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि उनका 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो सबसे पहले ये चीज इम्पोर्टेंट है। अब आप किसको अपना सुपरवाइजर बनाएं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स हमें ये मेल करते हैं और ये अपना डाउट पूछते हैं कि हमें सुपरवाइजर नहीं मिल रहा है, आप हमें हेल्प कीजिए। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो आपके काउंसलर्स होते हैं आप उनको सुपरवाइजर बना सकते हैं। आपका जो स्टडी सेंटर है आप वहाँ अपने काउंसलर से डिस्कस कीजिए और उनमें से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। अगर काउंसलर आपके गाइड नहीं बन पाएंगे, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप कहीं वर्किंग हैं तो अगर वहाँ कोई लाइब्रेरी है और वो लाइब्रेरियन लेक्चरर ग्रेड में है विद 2 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस, तो आप उनको चूज कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर के पास किसी लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन है उनको भी ध्यान रखिए, क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए। ये ध्यान रहे कि जिनको आप सुपरवाइजर बना रहे हैं उनके साथ आपका ज्योग्राफिकली क्लोज हो। हालांकि आजकल तो ICT बहुत डेवलप कर गई है, जरूरी नहीं है आपको उनसे मिलना, लेकिन ये है कि आप उनसे टच में रह सकें, क्योंकि आपको हर स्टेज में गाइडेंस और हेल्प की जरूरत होगी। आप किसी ऐसे को सुपरवाइजर बना लें जिनसे आप टच में ना रह पाए, या जिनके साथ अगर आपका रेपो है ऑलरेडी तो आप उनको अगर अपना सुपरवाइजर चूज करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो जैसे आप काउंसलिंग सेशंस अटेंड करते हैं, काउंसलर्स के साथ आप रेगुलरली मिलते हैं, तो उनके साथ आप रेपो डेवलप कर लेते हैं, तो उनके साथ आपका, अगर वो आपके सुपरवाइजर होंगे तो अच्छा है, लेकिन अदरवाइज आप औरों को भी बना सकते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि हम दूसरे स्टेशन से किसी को सुपरवाइजर बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, सिर्फ यही ध्यान रहे कि आप उनसे टच में रहेंगे। अब जब आप सिनॉप्सिस बनाएंगे, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस टाइम ये है कि लोग सिनॉप्सिस के साथ जो उनको फॉर्म्स भरने होते हैं, जो सिनॉप्सिस का एक स्ट्रक्चर है उसके साथ कुछ रेलिवेंट फॉर्म्स हैं जो उनको जमा करने पड़ते हैं, जो कि वो अक्सर भरते नहीं है और कई बार हमें वापस भेजना पड़ता है। तो ये जो फॉर्म्स हैं उसमें तीन एनेक्शर्स हैं और उसमें सुपरवाइजर की क्वालिफिकेशंस हैं, आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है और उनका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, उनका ग्रेड पे है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब चीजें फिल करके ही आप भेजिए, वरना हमें दोबारा से आपको कहना पड़ता है कि वो डिटेल दीजिए और तब आपको बार बार वो सब भेजना पड़ता है, उससे अननेसेसरी प्रॉब्लम होती है। तो ये तो छोटी मोटी चीजें आपके सिनॉप्सिस से रिलेटेड डिटेल्स के बारे में हो गई जो कि आपको बतानी बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि आप जो है सिनॉप्सिस जो बनाए उसके बारे में कैसे सिनॉप्सिस बनाए। तो देखिए, आप अक्सर स्टूडेंट्स हमसे भी पूछते हैं कि मेरा क्या टॉपिक हो, और सुपरवाइजर्स भी हमें कहते हैं कि स्टूडेंट आ जाते हैं हमें टॉपिक बताइए, और वो अक्सर सुपरवाइजर की ये शिकायत होती है कि हम किसी को अगर अपना स्टूडेंट ले लेते हैं अपने अंडर गाइडेंस के लिए ले लेते हैं तो अक्सर उनका प्रोजेक्ट वर्क हमें ही करना पड़ता है। तो आप अपने आप को सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए कि ये प्रोजेक्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका है, आपके सुपरवाइजर या गाइड सिर्फ आपको गाइड करने के लिए हैं। तो आप सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये बनाइए कि आप किस एरिया में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो एक्चुअली जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली आप जो थ्योरी कोर्सेस पढ़ रहे हैं, आपने अभी तक अपनी जो नॉलेज डेवलप करी है, आपने जो स्किल्स डेवलप किए हैं उनको अप्लाई करना है, उनको एक प्रैक्टिकल शेप देनी है। आपने कोई प्रोटोटाइप प्रोडक्ट बनाना है, कोई प्रोटोटाइप सर्विस बनानी है, तो आप ये ध्यान सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा एरिया आपका इंटरेस्ट का है, कौन सा एरिया ऐसा है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, कौन सा एरिया ऐसा है जिससे आप कुछ काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप एकदम टाइटल के बारे में मत सोचिए, सबसे पहले ये सोचिए किस एरिया में काम करना चाहते हैं। फिर जब आप जीरो डाउन करेंगे किसी पर्टिकुलर एरिया पे, उसके बाद फिर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आप थोड़ा लिटरेचर पढ़िए, उससे रिलेटेड जो लिटरेचर है आप किसी से डिस्कस भी कर सकते हैं। आप ऑलरेडी उस एरिया में क्या वर्क हुआ है वो देखिए, उससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि किस तरह का काम आप कर सकते हैं। कभी कभी लोग ये तो जरूर देखते हैं कि वर्क क्या हुआ है, लेकिन वो उसको एज सच ही ले लेते हैं और उसको ही कॉपी करके प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस भी ऐसे ही बना देते हैं, प्रोजेक्ट भी पूरा ऐसे ही बना देते हैं। आपको ध्यान रहे कि अगर आप कॉपी करेंगे तो आपका वो प्रोजेक्ट जो है या तो अप्रूव नहीं होगा, या फिर अगर वो किसी स्टेज पे ध्यान से निकल गया है और आप प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए आपको कॉपी नहीं करना, आपको इससे कुछ सीखना है, इसलिए इसमें आपके ही एफर्ट्स होने चाहिए सारे। तो देखिए कि सबसे पहले तो आप एक पर्टिकुलर एरिया में, और जब आप लिटरेचर को देखेंगे, आप लोगों से डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे लोगों ने और क्या प्रोजेक्ट्स इस एरिया में करे हैं, आप तब अपने लिए एक प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए एक टाइटल सोचेंगे, फिर आप इसके लिए सिनॉप्सिस बनाएंगे। और सिनॉप्सिस जो बनाएंगे आप उसमें सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देंगे, उसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए एक स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम देंगे। तो जो इंट्रोडक्शन है वो एक बैकग्राउंड है आपके प्रॉब्लम के बारे में, और प्रॉब्लम एग्जैक्ट है कि आप क्या करना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है जो आप जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं। उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि आप करना क्या चाहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव में स्टेट करें। तो आफ्टर यू हैव थॉट ऑफ द प्रॉब्लम यू कैन टू नो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट यू वांट टू अचीव आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, वो आप ऑब्जेक्टिव में बताते हैं। फिर अगर आपके इसमें कोई हाइपोथेसिस है आपके वर्क में, आपके प्रोजेक्ट में, आप हाइपोथेसिस आइडेंटिफाई कीजिए, उनको स्टेट कीजिएगा। आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको स्टेट कीजिएगा। फिर अगर आप मेथोडोलॉजी पे आप बात कीजिए, और अगर अच्छा होगा अगर आप एक ब्रीफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी डालेंगे मेथोडोलॉजी से पहले, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिटरेचर पढ़ लिया है तो आप लिटरेचर के बारे में, आप लिटरेचर में लोगों ने क्या किया है कैसे किया है, आप उसको एक पेज में आप उसको भी डिस्कस कीजिए। उसके बाद आप मेथोडोलॉजी पे आए, और मेथोडोलॉजी में आपकी स्टडी में क्या टूल्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, उनके बारे में बताइए। आप कैसे करेंगे जो काम करने जा रहे हैं, उसमें क्या टूल्स यूज करेंगे, क्या टेक्निक्स यूज करेंगे, आपका जो पॉपुलेशन है उसमें वो क्या है, उसका सैंपल क्या होगा और क्या सैंपलिंग मेथड और टेक्निक यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें वहाँ आप स्टेट करेंगे। और उसके बाद आप जो है आपके टेंटेटिव रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे, टेंटेटिव चैप्टराइजेशन बताएंगे और एक बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस ये सब बताएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप किस तरह के टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हमने वैसे अपनी प्रोजेक्ट गाइड में ऑलरेडी कुछ इलस्ट्रेटिव टॉपिक्स दिए हैं, लेकिन आजकल जो सिचुएशन है उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन ये आ गई है कि आप फील्ड में जाके सर्वे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है, तो हमने थोड़ा सा चीज़ों को चेंज किया है। हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए सबसे पहला तो ये काम किया है कि आपको अपना जो सिनॉप्सिस है वो आप सॉफ्ट कॉपी में हमें मेल कर सकते हैं, और वो मेल करने के लिए हमने आपको एक ईमेल आईडी दिया है, और वो ईमेल आईडी आपको मेल किया था हमने, और ignu@gmail.com, और आप उस पर अपना सिनॉप्सिस मेल कर दीजिएगा, और साथ में जो आपके सुपरवाइजर हैं उनसे कहिएगा कि वो एक कंसेंट भेजें कि वो आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। उसमें वो ये लिख देंगे आपका नाम एंड आपका एनरोलमेंट नंबर, और लिख दें कि आई हियर बाई गिव माई कंसेंट टू गाइड सो एंड सो फॉर द MLS प्रोजेक्ट। तो इससे हम आपका अप्रूवल बाई मेल ही आपको वापस भेज देंगे। अब रहा कि आप प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं, भाई देखिए आप क्योंकि आप फील्ड सर्वे तो कर नहीं सकते, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप थ्योरेटिकल स्टडीज कर सकें, या फिर कुछ ऐसी स्टडीज कर सकें जो इंटरनेट बेस्ड हो, वेब बेस्ड हो। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हो जो इनफैक्ट ऐसी लाइब्रेरीज की आजकल तो ज्यादातर सब लाइब्रेरीज ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो आप कोई ऐसी लाइब्रेरी चूज कर लीजिए। अब आपको क्योंकि जाना तो है नहीं उस लाइब्रेरी में, तो वो लाइब्रेरी कहीं भी हो आपको, क्योंकि वो विजिट को करना नहीं पड़ेगा, तो आप उसकी वेबसाइट देखिए, आप अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखिएगा कि उनके क्या रिसोर्सेज हैं, उनकी क्या सर्विसेज हैं, और वो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप उनकी एक ऐसी एक स्टडी कर सकते हैं। इसी प्रकार आजकल बहुत सारी लाइब्रेरी में लाइब्रेरी एप्स भी बनाए हैं, तो आप ऐसी एक स्टडी भी कर सकते हैं। जब आप उस लाइब्रेरी की स्टडी कर रहे हैं तो आप ऐप की स्टडी भी कर सकते हैं, या फिर आप एक ऐसी स्टडी भी कर सकते हैं जिसमें आप लाइब्रेरी एप्स की ही स्टडी करें, या फिर आप लाइब्रेरी की वेबसाइट्स की एक कंपैरेटिव स्टडी कर लें। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि आज की तारीख में ई रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है। ई रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं जो कि फ्री हैं, पब्लिक डोमेन में इजीली अवेलेबल हैं, दूसरे पेड रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि ज्यादातर जो रिसोर्सेज आजकल हैं वो आपको पेड रिसोर्सेज भी फ्री अवेलेबल हैं, तो आपको ऐसे रिसोर्सेज को स्टडी कर सकते हैं। एक ऐसी कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट को आप चूज कर लीजिए, और उस सब्जेक्ट में ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके क्रिटिकल स्टडी कर लीजिए, तो जरूरी नहीं है वो ओपन एक्सेस ही हो, वो पेड रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई थ्योरेटिकल स्टडी करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जॉब्स की स्टडी कर सकते हैं, जो लाइब्रेरी साइंस में जॉब्स हैं, और वो जॉब्स जो हैं वो उनका आप एडवर्टाइजमेंट एनालिसिस कर सकते हैं उन जॉब्स का। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, या मान लीजिए और भी जॉब पोर्टल्स हैं, उस पे आप एक साल की स्टडी कर लीजिए, कि किस तरह की जॉब्स वहाँ एडवर्टाइज हुई, उनके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी, क्या रिक्वायरमेंट्स थी, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में जो जॉब्स का एडवर्टाइजमेंट है, जैसे यूनिवर्सिटीज में वो जो जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं, किसी कॉलेज में जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं, वो उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अवेलेबल होते हैं, आप उनका भी एनालिसिस कर सकते हैं। इसी प्रकार आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन पे भी कोई स्टडी कर सकते हैं, जैसे आजकल लर्नर आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, तो वो आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है, या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करिकुलम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है आप उनकी स्टडी कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि आप प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी हुए हैं, जो रिसर्च हुई है, आप किसी पर्टिकुलर एरिया में है, उसकी भी आप स्टडी कर सकते हैं। या फिर कोई ओपन एक्सेस जर्नल है, आप उसकी बिब्लियोमेट्रिक स्टडी कर सकते हैं, आप उसके कुछ पर्टिकुलर इश्यूज की स्टडी कर दीजिए। तो इस तरह आप ये सोच लीजिए कि जो भी आप स्टडी करें वो उसमें आपको फील्ड विजिट ना करना पड़े। आज जिस दौर से हम निकल रहे हैं उसमें देखेंगे आप कि इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप ये भी देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन बहुत जनरेट भी हो रही है और डिसेमिनेट भी हो रही है, और अलग अलग मीडिया से हो रही है, और इसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो आप पर्टिकुलर एक मीडिया को चूज करते हुए उसमें किस तरह इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, किस तरह डिसेमिनेट हो रही है, और उसके यूज पे भी आप एक स्टडी कर सकते हैं, और वो अलग अलग तरह की स्टडीज हो सकती हैं, वो पर्टिकुलरली डिपेंड करता है आप कौन से मीडिया को चूज करते हैं। हाँ, इसी तरह आप वेबोमेट्रिक स्टडीज कर सकते हैं, या फिर अगर आपने सोशल इंफॉर्मेशन का सोशल मीडिया पे है, इसी तरह आप आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ जो कोविड डिजीज है, ये जो कोविड है, कोविड-19, इस पे इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसकी स्टडी कर सकते हैं, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में जो कि आपके इंटरेस्ट का है उसमें आप वेब एनालिसिस कर सकते हैं, और आप उसके स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट भी बना सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, क्या उसमें नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जैसे मैंने आपको एक कोविड एक एग्जांपल दिया, आप इसी तरह किसी भी सब्जेक्ट से इस तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट बना सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि आप जो भी प्रोजेक्ट करें, आप ये ध्यान रहें कि उसमें आप ये सीख पाएं कि कैसे आपने उसको फॉर्मुलेट करना है सिनॉप्सिस के रूप में, कैसे आप उसको स्टडी करेंगे सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली, और उसमें आप उसको रिसर्च कैसे करेंगे लिटरेचर को ऑलरेडी जो हुआ हुआ है उसमें, और उसको कैसे एनालाइज करेंगे, और सब कुछ साइंटिफिकली करेंगे। और जब आप उसको कर लेते हैं तो आप उसको प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट में प्रेजेंट कैसे करें, और प्रोजेक्ट में प्रेजेंट करने के लिए भी आपका जो चैप्टराइजेशन था, टेंटेटिव था चैप्टराइजेशन, आप उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर बनाएंगे, एक चैप्टर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर बनाएंगे, उसके बाद एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का चैप्टर होगा, और अगर आपको कोई थ्योरेटिकल चैप्टर बनाने की जरूरत है, अगर आपकी एक ऐसी स्टडी है तो एक थ्योरेटिकल चैप्टर हो सकता है, उसके बाद आप डेटा एनालिसिस का एक चैप्टर बनाएंगे, और फिर उसकी फाइंडिंग्स का और एक कंक्लूजन पे एक चैप्टर होगा। तो इस प्रकार आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कीजिएगा, और ये आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि अभी तो हमारे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोजेक्ट ऑनलाइन सबमिट हो, अभी तक तो हार्ड कॉपी ही सबमिट होगी SCED में, लेकिन आगे अगर यूनिवर्सिटी कोई डिसीजन लेगी तो आपको कम्युनिकेट होगा।
जी डॉक्टर जयदीप शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें MLIS प्रोजेक्ट पर जानकारी देने के लिए, धन्यवाद सर।
शिक्षा